તારીખ 13/11/1993 પૂજ્ય બેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 432 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 374
તીર્થાદિનાથ ભગવાન વર્ધમાન સ્વામી કા નિર્વાણ દિન હૈ જિસકે શાસન મે उनकी देशना का हम लाभ ले रहे हैं। ऐसे अनंत उपकारी महावीर भगवान का इस अंतिम कल्याण का दिन है। भगवान ने आज नश्वर देह का त्याग किया और सिद्धालय में पधारे। वैसे तो भरत क्षेत्र के साधक जीवों को भगवान का वियोग हुआ, फिर भी इस प्रसंग को कल्याणकारी माना जाता है। कल्याणक माने कल्याणकारी, कल्याण करने वाले को कल्याणक कहने में आता है। इस प्रसंग को लेकर के, यानी इस प्रसंग के निमित्त से भी अनेक जीव मोक्ष मार्ग में आए, अनेक जीव मुनि दशा में आए और गौतम आदि गणधर स्वामी जैसे उत्कृष्ट पात्र थे, वो तो केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया। इसलिए इस दिन को, इस प्रसंग को कल्याणक मानने में आया है। पूज्य बेनश्री के वचनामृत में आखिर का वचनामृत है, वचनामृत 432 पृष्ठ संख्या 201। किसी ने दिवाली के दिन पर प्रश्न पूछा है, दिवाली के दिन पर ही पूज्य बेनश्री ने उसका उत्तर दिया है, तो इस ग्रंथारूढ़ हुआ है। आज वीर निर्वाण दिन के प्रसंग पर कृपया दो शब्द कहिए। मैंने इसी प्रसंग के विषय में हमने दो शब्द कहिए। श्री महावीर तीर्थादिनाथ आत्मा के पूर्ण अलौकिक आनंद में और केवल ज्ञान में विराजते थे। भगवान महावीर स्वामी के इस पर्याय की आयु 72 साल की थी। 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। 12 साल तक भगवान ने साधक मुनि दशा में साधना की और फिर 30 साल तक वो केवल ज्ञान में विराजमान है। तो केवल ज्ञान में पूर्ण अलौकिक आनंद में परिणमते थे, केवल ज्ञान में परिणमते थे और आज उन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त की। सुबह करोड़ में आज सिद्ध दशा की प्राप्ति की, मैंने आयु पूर्ण हुआ और भगवान सिद्धालय में पधारे। पावापुरी से वे आज जो पावापुरी तीर्थ है, निर्वाण धाम है, वहां से बराबर ऊपर में आज भी भगवान सिद्ध पर्याय में विराजमान है। वहां चैतन्य शरीरी भगवान, उद्गल शरीरी नहीं थे वे, क्या चैतन्य शरीरी भगवान आज पूर्ण अकंप होकर अयोगी पद को प्राप्त हुए। आज पूर्ण अकंप हो गए, जो कंपन था मन वचन काया के योग से 13वें गुण स्थान में, तो कंपन पूरा हो गया, कंपन का अभाव हो गया। पूर्ण अकंप दशा, स्थिर दशा, भाव से तो स्थिर थे ही, अब द्रव्य से भी स्थिर हो गया, अयोग्य पद को प्राप्त हुआ। मैंने मन वचन काया का योग अब नहीं रहा, अयोग्य पद हो गया। पूरा चैतन्य पिंड पृथक हो गया, चैतन्य पिंड पूरा आत्मा है, वो देह से अलग हो गया। स्वयं पूर्ण चिद्रूप होकर चैतन्य बिंब रूप से सिद्धालय में विराज गए, स्वयं पूर्ण चिद्रूप होकर के। फिर जो असिद्धत्व था, वो असिद्धत्व था, तेरहवें चौदहवें स्थान में असिद्धत्व दशा थी, वो भी विनाश हो गई, पूर्ण चिद्रूप हो गए और पूर्ण चैतन्य बिंब रूप होकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए। एक समय में वहां पहुंच गए। अब सदा अनंत काल पर्यंत, सदा मैंने अनंत काल पर्यंत समाधि सुख आदि अनंत गुणों में परिणमन करते रहेंगे। मुख्य सुख की बात लिया है, सभी पूर्ण, सभी गुण पूर्ण शुद्ध परिणमन हो जाएगा और पूर्ण सुख भी अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक परिणमित हो जाएगा। परिणमन ऐसा करते रहेंगे, यानी परिणमन ऐसा होता रहेगा। आज भरत क्षेत्र से त्रिकाली नाथ चले गए, ऐसे तीन लोग के नाथ थे भगवान तीर्थंकर देव, वो आज भरत क्षेत्र से चले गए, सिद्धालय में चले गए। भरत क्षेत्र खाली हो गया, भगवान चले गए तो भरत क्षेत्र खाली हो गया, सुनसान हो गया। तीर्थंकर भगवान का वियोग हुआ, वीर प्रभु का आज विरह पड़ा। ऐसे तो ये विरह का दिन है, वियोग का दिन है, फिर भी ऐसे विरह से भी, वियोग से भी, इस निमित्त से भी साधक को तो साधना में आगे बढ़ने का ही होता है। चाहे भगवान का संयोग हो, चाहे भगवान का वियोग हो, देखो क्या होता है। ऐसा नहीं कि वियोग होने से साधना छूट जाए या टूट जाए, ऐसा नहीं बनता। क्या बात है, संयोग हमेशा रहने वाला नहीं है, संयोग सादी शांति ही होता है। संयोग होने से प्रमोद होता है ज्ञानी का, तीर्थंकर प्रभु का, निर्ग्रंथ गुरु का, सजीवन मूर्ति का संयोग होने से प्रमोद आता है, और वियोग होने से थोड़ा खेद भी होता है। ये दोनों बाहरी दशा है, बाहर की दशा है। प्रमोद आता है वो भी बाह्य दशा है, पर खेद होता है वही बाह्य दशा है। बाह्य दशा में ऐसा दो प्रकार बनता है कि किंतु अंतरंग साधना की दशा में तो एक ही प्रकार बनता है। संयोग से भी साधना वर्धमान होती है और वियोग होने पर भी साधना वर्धमान होती है। कैसे होती होगी, अरे ये संयोग क्षण भंगुर है, विनाशकारी है, इसका अवलंबन से राग होता है और मेरी साधना तो वितराग भाव रूप है। वैराग्य को प्राप्त करके अंतर में अधिक पुरुषार्थ उत्पन्न करके साधना को वृद्धिगत करते हुए साधक वियोग में भी आगे ही बढ़ते हैं, संयोग में भी आगे बढ़ते हैं और वियोग में भी आगे ही बढ़ते हैं। इसलिए भगवान के वियोग को भी कल्याणक रूप में माना गया है। ये लोग तो, ये मुसलमान का संप्रदाय है ना, वहां तो लोग रोने लगते हैं, कूटने लगते हैं, काले वस्त्र पहनते हैं, सब शोक मनाते हैं। पर इधर तो देव इंद्र साधक सब उत्सव मनाते हैं, शोक नहीं मनाते, लेकिन उत्सव मनाते हैं। बाहर में भी उत्सव और भीतर में भी साधना की वृद्धि हुई, उसमें भी उत्सव, क्योंकि भगवान का कोई कार्य भी खेदजनक नहीं है, भगवान का कोई परिणमन भी खेदजनक नहीं है। वास्तव में तो वो साधना को बढ़ाने वाला ही होता है। निर्वाण महोत्सव कहते हैं, महा उत्सव कहते हैं, उत्सव क्या, महा उत्सव है। जैसे सत्पुरुष का सभी आचरण वंदन योग्य ही होता है, 272 पत्र में कृपालु देव लिखते हैं कि सत्पुरुष के सर्व आचरण वंदन के योग्य ही है। तो ये तो तीर्थंकर परमात्मा तीन लोक के नाथ है, इसका सभी आचरण वंदन के योग्य हो गए, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। हाँ, वेदना प्रकट किया, लेकिन वो बाह्य दशा है। अंतरंग दशा में उस वेदना से भी योग्यता बढ़ती है मुमुक्षु को। साधक की बात तो ठीक है कि वो साधना में वृद्धि करता है, वैराग्य को प्राप्त करके अंतर में अधिक पुरुषार्थ से लीन होते हैं, बुनियादी होते हैं वो तो। पर गंधर्व भगवान तो केवल ज्ञान को भी प्राप्त, पूर्ण दशा को प्राप्त कर लिया, लेकिन मुमुक्षु की योग्यता बढ़ती है, विरह की वेदना में भी योग्यता बढ़ती है, संयोग के प्रमोद में भी वेदना बढ़ती है, और विरह की वेदना में भी इसकी योग्यता वर्धमान को, वर्धमानता को प्राप्त होती है। ऐसे आज वीर प्रभु का विरह पड़ा फिर भी नुकसान किसी को नहीं हुआ। क्या विरह पड़ने से किसी को नुकसान हो गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है, किसी को नुकसान नहीं हुआ। इंद्रों ने ऊपर से उतरकर आज निर्वाण महोत्सव मनाया। इंद्रादि देवों ने तो असंख्य देव आते हैं, कितने आते हैं, बहुत आते हैं, करोड़ों देव आते हैं, आकाश में से आते हैं, ऊपर से आते हैं। तो कभी कभी जैसे बादल से सूर्य ढंक जाता है, ऐसे देवों का समूह इतना बीच में आ जाता है कि सूर्य को आच्छादित होना हो जाना पड़ता है कि ये क्या बादल नहीं है, फिर भी प्रकाश क्यों नहीं मिल रहा है, कि इतनी संख्या में देव आ रहे थे बीच में, बादलों की तरह घनिष्ठ ऐसा समूह होता है। इंद्रों ने ऊपर से उतर कर आज निर्वाण महोत्सव मनाया। इंद्र अकेला नहीं आता निर्वाण महोत्सव के लिए, अकेला एक सेठ भी अकेला नहीं जाता, इसका नौकर दो तीन साथ में रहता है, राजा है तो उसका मंत्री साथ में रहता है, प्रधानमंत्री हो तो उसका भी चार्टर प्लान रहता है। ये तो सब भिखारी गिना जाता है, इंद्र के पास ये सब भिखारी है। तो इंद्र तो कितने समूह के साथ आता है। इंद्रों ने ऊपर से उतर कर आज निर्वाण महोत्सव मनाया। देवों द्वारा मनाया गया यह निर्वाण कल्याणक महोत्सव कैसा दिव्य होगा, कैसा प्रभावशाली होगा, कैसा दिव्य होगा, उत्सव भी कैसा महान होगा, कैसा दिव्य होगा, कि इसका वर्णन भी कोई कर सके नहीं ऐसा। उसका अनुसरण करके आज भी लोग प्रतिवर्ष दिवाली के दिन दीप माला प्रज्वलित करके दीपावली महोत्सव मनाते हैं। ज्ञानियों ने ज्ञान दीपक की आवली दीपावली करी, ज्ञानियों ने तो अंतर में आत्मा में ज्ञान दिया जलाया, ज्ञान दीपक प्रकट करके दीपावली मनाई। पर आम जनता ने बाहर में ये पुद्गल के दीवाओं को, तो उसी तरह जो निर्वाण महोत्सव है उसमें बहुत दीप जलाए होंगे, तो वहां से आज 2500 साल से ये दीपावली महोत्सव बोलने में आया है। आज वीर प्रभु मोक्ष पधारे और गणधर देव श्री गौतम स्वामी तुरंत ही अंतर में गहरे उतर गए, उनका उपयोग का बाहर का अवलंबन छूट गया। मेरी दशा में अल्प अवलंबन था, भगवान के प्रधानमंत्री थे तो भगवान के प्रति शुभोपयोग जाता था, साधना तो उत्कृष्ट चरम सीमा की थी। निमित वहां से वियोग हो गया तो इधर भीतर में उपयोग भीतर में चला गया। भगवान निर्वाण पधारे पर वो शुक्ल ज्ञान की श्रेणी में आ गया, केवल ज्ञान को प्राप्त
भगवान का राजपाट संभाल लिया।
केवल ज्ञान भगवान केवल ज्ञान के जो स्थिति में अरिहंत दशा में थे, वो अरिहंत दशा में वो गणधर देव आ गए। जो अरिहंत दशा में भगवान महावीर थे उसी केवल ज्ञान दशा में गौतम गणधर स्वामी आ गए। और वितराग दशा प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। आत्मा के दिगंबर जैन के घर में जन्म नहीं लिया था, लेकिन वास्तव में तो वही दिगंबर थे। वो तो दीक्षा तो दिगंबर ही दीक्षा ली थी, ब्राह्मण होते हुए भी दीक्षा लिया तो दिगंबर ही दीक्षा लिया या ब्राह्मण की दीक्षा लिया है? तो वास्तव में तो दिगंबर वही बने, द्रव से भी और भाव से भी। बाहर में ये कपड़े वस्त्र नहीं थे और अंदर में राग के वस्त्र नहीं थे, राग की ग्रंथि नहीं थी, निग्रंथ हो गया। ये तो इसलिए बड़ा एक दृष्टांत है, ऐतिहासिक जीवंत दृष्टांत है कि किसी को कोई साधक अन्य मत में जन्म ले लेवे, मार्गानुसार से लेकर के गणधर पद तक का ये जीव हो सकता है, भले ही इसका जन्म अन्य मत में हुआ हो तो मार्गानुसार लेकर के फिर गणधर पद तक इसका केवल ज्ञान भी हो सकता है। अन्य मत में जन्म नहीं हुआ इसलिए वो केवल ज्ञान का अधिकारी नहीं है, वो भी नहीं है। सम्यक दर्शन को तो और बात है, केवल ज्ञान तक उसका अधिकार है। ये जीवंत सबूत है, हमारे पास ये जीवंत सबूत है। इसलिए संप्रदाय बुद्धि कहीं भी 1% भी रखने वाली रखने योग्य नहीं है। कौन भी जन्म है, ये तो मुसलमान आज वैसा हो गए हैं लोग, वरना ये सब आर्य है। हमारा ये अपना जो अमेरिका यूरोप वाली जो पृथ्वी है तो 6 खंड का भी, आर्य खंड का भी एक हिस्सा है। 6 खंड तो बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है, चक्रवर्ती का राज तो इससे भी बड़ा है। 6 खंड का इसमें आर्य खंड का ये हिस्सा है, तो सब आर्य ही थे, अनार्य जैसे हो गए हैं लेकिन है सब आर्य, ऐसी बात है। गौतम स्वामी तुरंत ही अंतर में गहरे उतर गए और वितराग दशा प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। आत्मा के स्वक्षेत्र में रह करके लोकालोक को जानने वाला आश्चर्यकारी स्वपर प्रकाशक प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें प्रकट हुआ। किसको? गौतम स्वामी को। तो भगवान गौतम स्वामी बोला जाता है, अन्य मत वाला नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं? भगवान गौतम स्वामी। आत्मा भी अभी सिद्धालय में विराजमान है, गुणावा है ना, गुणावा में से गुणा भावापुरी के नजदीक यहाँ से जावे तो पहले गुणावा आता है, नवादा गुणावा बगल बगल में, वहां से गौतम स्वामी गए मोक्ष पधारे। आत्मा के स्वक्षेत्र में रह करके भगवान गौतम स्वामी को लोकालोक को जानने वाला आश्चर्यकारी स्वपर प्रकाशक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुआ। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में आनंद आदि अनंत गुणों के अनंत पूर्ण पर्याय प्रकाशमान हो उठे। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में अनंत आनंद अनंत ज्ञान ऐसे ऐसे अनंत गुणों की अनंत पूर्ण पर्याय प्रकट हो गई। केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो सब गुण भी अनुजीवी गुण है, सो सब शुद्ध पूर्ण शुद्ध प्रकट हो जाता है। अभी इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान का विरह है, केवल ज्ञानी भी नहीं है। तीन केवली थे वो पंचम काल में मोक्ष पधारे, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी। जम्बू स्वामी मथुरा में से गए, जम्बू स्वामी मथुरा में से गए, हाँ चौरासी मथुरा चौरासी कहते हैं, वहां से गए। अभी बाद में कोई केवल ज्ञानी भी इधर नहीं होते हैं, अभी कोई नहीं, अंतिम तीन हुए जिसका जन्म चतुर्थ काल में हुआ था लेकिन निर्वाण पंचम काल में हुआ। भगवान महावीर स्वामी जब निर्वाण पधारे तब पंचम काल के ढाई महीना से कुछ करीब अधिक थोड़े दिन, दो महीना और बीस दिन करीब बाकी था पंचम चतुर्थ तारा का, फिर पंचम तारा चालू हो गया। कोई केवल ज्ञान हुआ और आयु बाकी था, गंधर्व भगवान का, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, सुधर्म स्वामी केवल ज्ञान तो पा लिए थे लेकिन आयु शेष था, तो पंचम आरा में भी मोक्ष गए। इसलिए पंचम आरा में मोक्ष नहीं जाते हैं ऐसी बात नहीं है। तीन गए लेकिन अभी नए केवल ज्ञानी होते नहीं, इसलिए इनका निर्वाण भी अभी होने का सवाल नहीं होता। अभी कोई केवल ज्ञानी नहीं है। महावीर क्षेत्र में कभी तीर्थंकर का विरह नहीं होता। अभी केवल ज्ञानी नहीं है तो केवल ज्ञानी का जब अभाव हो जाता है पंचम आरा में तब वाद विवाद और अन्य मत ज्यादा फैलता है। अन्य मत भी वृद्धिगत होते हैं पर जैन मत में भी वाद विवाद ज्यादा बढ़ता है, साधक कम रह जाते हैं और जो साधक नहीं है ऐसे जो अंदर में जागृत नहीं है सोए हुए हैं, यानी जिसको ज्ञान चक्षु नहीं है लेकिन अंधे हैं राग से, ये लोग वाद विवाद में फंसते हैं तो फिर ज्ञानियों को अफसोस होता है, अरे क्या करे। गुरुदेव कहते थे अभी कोई केवल ज्ञानी नहीं रहा, तीर्थंकर नहीं रहा, कोई धनी नहीं कहने वाला कोई धनी नहीं रहा, अपने मनमाने सब बोलते हैं ऐसे समर्थ पुरुष जाने से ऐसा बात में बनता है, गड़बड़ होता है। केवल ज्ञानी भी नहीं है, महावीर क्षेत्र में कभी तीर्थंकर का विरह नहीं होता। इस काल में भी है 20 तीर्थंकर है वहां। महावीर क्षेत्र में कभी तीर्थंकर का विरह नहीं होता, सदैव धर्म काल वर्तता है ना, तो चतुर्थारा जैसा ही काल है। अन्य मति का कोई प्रसिद्ध रूप से वहां प्रवृत्ति नहीं होता है। भीतर में जीवन निमति हो जाते हैं लेकिन बाहर में इतना पुण्य किसी का नहीं हुए कि तीर्थंकर देव के सामने भी कोई अड्डा जमा करके बैठ सके, ऐसा होता नहीं है। आज भी वहां भिन्न भिन्न विभागों में एक एक तीर्थंकर मिलकर के 20 तीर्थंकर विद्यमान है। हाँ, आज भी विवेक क्षेत्र में कम से कम 20 तो रहता ही है, यहाँ तो एक पीछे एक होता है भरत क्षेत्र में, पर वहां तो कम से कम 20 रहता है, पर ज्यादा से ज्यादा 160 होते हैं एक साथ। वर्तमान में विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती विजय में श्री सिमंदर नाथ विचर रहे हैं। अभी जो है हमारे गुरुदेव जहां से आए पूर्व में, ऐसे वर्तमान में विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती विजय में, वो पुष्कलावती विजय नाम का क्षेत्र है, श्री सिमंदर नाथ वहां विचर रहे हैं, और समोसरण में विराज कर दिव्य ध्वनि के स्रोत बहा रहे हैं। 500 धनुष के शरीर का क्षेत्र प्रमाण आयु ऊंचाई है, और 1 करोड़ पूर्व का आयुष है, अपने अगली आने वाली 24 में जब 13वें तीर्थंकर होंगे तब सिमंदर भगवान निर्वाण सिद्धाली में पधारेंगे, उतना लंबा आयु है। और समोसरण में विराज कर दिव्य ध्वनि के स्रोत बहा रहे हैं, आज भी वहां दिव्य ध्वनि में अध्यात्म तत्व का धोध मार उपदेश वहां चलता है, कभी
अभी
अभी भी चलता है, इधर कोई एक भी केवली नहीं है, वहां 20-20 केवली का दिव्य ध्वनि का धोध बरसता है। कैसा काल होगा, 20-20 तीर्थंकर जहां होगा। इस प्रकार अन्य विभागों में अन्य तीर्थंकर भगवंत भी 20 तीर्थंकर विचर रहे हैं। यद्यपि वीर भगवान निर्वाण पधारे हैं, तथापि इस पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में वीर भगवान का शासन प्रवर्त रहा है, उनका उपकार हमारे पर वर्त रहा है। भगवान ने जो धर्म वर्षा की वो इतनी बड़ा, वो इतना बड़ा पैमाने में थे, इसका प्रमाण इतना बड़ा था कि ये वर्षा का शेष अंश अभी भी चालू ही रहा है, अभी भी इसका अंश पाकर के भी कोई मोक्ष मार्ग में नया शुरुआत कर सकता है, नया प्रयाण कर सकता है, ऐसा अभी भी चालू है। इसलिए भगवान का उपकार अभी भी हमारे पर चालू है। ये कहना चाहिए कि हमको अभी अगर सही उपदेश मिल रहा है, सही बात सुनने में या पढ़ने में आगम में से आ रही है, इसका मूल कारण तीर्थंकर देव का भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है। 30-30 साल तक जो ये धर्म वर्षा हुई और इतना धर्म फैला और धर्म की नींव इतनी गहरी गई कि ये पंचम आरा तक चलने वाली चीज है, तो भरत क्षेत्र में महावीर भगवान का शासन प्रवर्त रहा है और उनका उपकार आज भी हमारे पर वर्त रहा है। देखिए कुंदकुंद आचार्य देव ने जो शास्त्र बनाए उसमें महावीर भगवान को मांगलिक में वंदना की है। 500 साल हुआ था इस वक्त तो भगवान को सिद्धालय में पधारे, 500 साल हुआ था, तो जो अपने शास्त्र रचे उसमें भगवान महावीर स्वामी को मांगलिक करके वंदन प्रणाम किया है। क्यों कि हमको जो साधक दशा वर्त रही है तो गुरु परंपरा में देखे तो जगत गुरु परम गुरु ऐसा जो महावीर तीर्थंकर भगवान थे उनके कारण से हमको ये प्राप्त हुई है। इनकी परंपरा में होने वाले जो गुरु थे वो निग्रंथ गुरु जो है वो हमारे गुरु रहे और हमको ये दिशा की प्राप्ति हुई। ऐसे वीर प्रभु के शासन में अनेक समर्थ आचार्य भगवान हुए, कुंदकुंड आचार्य हुए, ऐसे अनेक समर्थ आचार्य भगवान हुए जिन्होंने वीर भगवान की वाणी के रहस्य को विविध प्रकार से शास्त्रों में भर दिया है। ये सभी आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में क्या भरा है कि वीर भगवान की वाणी को भरा है। तो आज के जो आचार्य के शास्त्र है वो वास्तव में भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, वही दिव्य ध्वनि है, ऐसा लेना चाहिए क्योंकि गुरु परंपरा से ये परंपरा चली आई, मूल चीज अभी विद्यमान है। हमारा यह महान सौभाग्य है कि मूल चीज भगवान महावीर स्वामी की 2500 साल के बाद भी अभी मौजूद है। आएगा आएगा, वो भी आएगा। अभी तो जो चलता है उसकी बात कर रहे हैं, साथ में पाठ आ रहा कहीं हो सकती है, लेकिन वाणी रह गई। देखिए वाणी में उतनी ताकत है कि वाणी रह गई, भगवान महावीर स्वामी की वाणी अभी मौजूद है, ये परम हर्ष का विषय है हमारे लिए कि हम इसका सम्यक लाभ उठावे पर हमारे आत्मा का कल्याण कर ले। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो किसी का कोई धनी हो सकता नहीं है, लेकिन करना चाहे तो हो सकता है क्योंकि ये सतवाणी है। कईयों का सरनेम सतवाणी होता है, तो भटक होता है ना, सतवाणी, बोटवाणी, सतवाणी, सतवाणी सिंधी में खास में, सिंधी में सतवाणी है, तब ये सतवाणी रह गई है, सत्यवाणी रह गई है, उससे सत प्रकट हो सकता है। आज भी सत प्रकट हो सकता है, कईयों को प्रकट हुआ और इसकी परंपरा ही चालू है। अभी जो भी ज्ञानी है, ज्ञानी हो रहे हैं, वो उसी के कारण से है। मूल में भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए हैं, इसकी देशना है, फिर इसकी परंपरा चलती है। हाँ, नमन करते कि नहीं वाणी को, वाणी को नमन करते कि नहीं करते, वो शास्त्र है, वो वाणी है, और भगवान और हमारे बीच में कोई सेतु है तो कौन है? भगवान है, केवल ज्ञानी परमात्मा परणु है, दोनों के बीच में सेतु कौन है? ये वाणी तो सेतु है। सेतु मैंने पुल, ब्रिज, नदी के दो किनारे होते हैं, ऊपर में जो ब्रिज लगता है, सेतु लगता है, एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं। हम भगवान जैसा तक कब पहुंचेंगे? भगवान के वाणी का सहारा लेकर के। द्रव्य स्रोत का इतना महत्व है, सम्यक दर्शन तो बाद की बात है, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय भी द्रव्य स्रोत बिना होता नहीं है। आया कि नहीं आया 144 में? प्रथम तो द्रव्य स्रोत द्वारा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निश्चय करना, बाद में सम्यक दर्शन होगा। तो ये शुकन तो पहला होता है, वाणी पहले सामने आती है, ये मांगलिक है। मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने वाले को किसका सुकन होता है? ये भगवान की वाणी का द्रव्य स्रोत का सुकन होता है, इसलिए उसको पूजनीय कहने में आता है। इसलिए हम ग्रंथ को भी क्यों पूजते हैं? सूत पंचमी के दिन पूजा करते कि नहीं? पूजा स्वरूप पूजा करते हैं कि नहीं? ऐसे आचार्य भगवंतों ने वीर भगवान की वाणी को, वाणी के रहस्य को, वाणी का रहस्य क्या है, अंतर्मुख कैसे होना, अंतर्मुख होकर के आत्मस्वरूप का, परम पद का अवलंबन कैसे लेना और मोक्ष मार्ग में आरूढ़ कैसे होना, यही परम रहस्य है। ऐसा रहस्य को विविध प्रकार से, अनेक प्रकार के कथन पद्धति से शास्त्रों में भर दिया है। श्री कुंदकुंड आदि समर्थ आचार्य भगवंतों ने अभी लिया। देखिए आज कहीं दिगंबर संप्रदाय में ऐसी भ्रांति चलती है, दिगंबर संप्रदाय उधर ज्यादा है, एमपी यूपी में ज्यादा है, राजस्थान में ऐसी भ्रांति चलती है कि सोनगढ़ वाले तो सिर्फ कांदे स्वामी को मानते हैं और कुंकुंड आचार्य को मानते हैं, दो को ही मानते हैं, तीसरे का नाम नहीं लेते हैं। तो उनको ये दोनों नाम का फिर एलर्जी हो गया है, कोई हमारा वाला उसका नाम ले तो उनको एलर्जी होता है क्या, अरे ये तो कुंकुंड आचार्य का नाम लेने वाले हैं, ये तो कांजी स्वामी का नाम लेने वाले। देखो
बेंसरी ने
क्या लिखा है कि वीर प्रभु के शासन में अनेक समर्थ आचार्य भगवान हुए, स्वीकार किया कि नहीं किया,
स्वीकार किया,
जितने हुए सभी का स्वीकार किया है। उसमें समुद्र आचार्य भी आ जाते हैं, वीरसेन आचार्य भी आ जाते हैं, जिनसेन आचार्य भी आ जाते हैं, उमा स्वामी भी आ जाते हैं, सब आचार्य आ जाते हैं जिन्होंने वीर भगवान की वाणी के रहस्य को विविध प्रकार से शास्त्रों में भर दिया है। सबकी वाणी का स्वीकार किया, सब आचार्य का स्वीकार किया और सभी की वाणी और सभी के शास्त्र का भी स्वीकार किया। पद्मनंदी आचार्य, पूज्यपाद स्वामी, इसके शास्त्र पर तो गुरुदेव का प्रवचन हुआ है, योगेंद्र देव, परमात्मा प्रकाश, योगसार, इसका तो प्रवचन हुआ है।
लेकिन वर्तमान में किसी का स्वीकार है? वर्तमान के और किसी का स्वीकार है?
हाँ, वर्तमान में सभी आचार्यों को स्वीकार करते हैं। वर्तमान में सभी को मानते हैं,
अभी जो वर्तमान में जो,
हाँ वर्तमान में मुझे, हाँ वो तो है नहीं तो किसको माने, है उसको माने, नहीं है उसको भी माने,
है।
कोई बंदर हमारे पिताजी का कपड़ा पहन ले तो क्या हम करें, है उसको पिताजी मान ले क्या, है वेश धारण करने से नहीं मानेंगे, दशा चाहिए मात्र, ऐसी बात है। हाँ शास्त्रों में, नहीं शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि उसका संग मत करो, असंयमन बंदे ही, उसको असंयम ही कहा है, जिसको भावलिंग नहीं है और जो मिथ्यात्व अवस्था में है उसको संयम ही नहीं है, ऐसा कहा है अष्ट पौर में कुंकुंडाचार्य देव ने कहा है, और उसका बंधन, उसको बंधन नहीं करना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने भी लिखा है, इसलिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को मानते नहीं। ये सब मूल गाथा है। श्री कुंदकुंड आदि समर्थ आचार्य भगवंतों ने दिव्य ध्वनि के गहन रहस्यों से भरपूर परमागमों की रचना करके मुक्ति का मार्ग अद्भुत रीति से प्रकाशित किया है। क्या है कि शुरू में जो प्रथम श्रुत स्कंध हमारा चालू हुआ है उसमें पुष्पदंत भूतबली दोनों आचार्यों ने और उसके टीकाकार जो वीरसेन स्वामी हैं उन्होंने करुणानुयोग हाथ में लिया, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख करके उनको ये लगा कि अगर जिन शासन को टिकाना है, भगवान के शासन की वृद्धि करनी है, टिकाना है, तो तो हमें करुणानु योग का जो हमारा ज्ञान है वो तो ग्रंथारूढ़ प्रसिद्ध कर देना चाहिए। दर्शनाचार्य को ये विकल्प हुआ, पर उन्होंने दूसरे दो आचार्यों को आज्ञा दी, पुष्पदंत मुद्गलि को, तुम तो उसको ग्रंथारूढ़ करो। तो ज्ञान ऐसा दिव्य ज्ञान है जो केवल ज्ञान की परंपरा से चलता है, कि किसी अन्य मत में वो बात हो सकती नहीं। अध्यात्म की बात करेंगे वेदांत वाले, वितरागता की बात करेंगे, समाधि की बात करेंगे, ब्रह्मानंद की बात करेंगे, करुणानुयोग कहां से लाएंगे? केवली जिसके नहीं है वो करुणानुयोग ला सकते हैं? नहीं है। तो पहले इसको सुन के रचना हुई, फिर जो कुंदकुंदाचार्य देव हुए उन्होंने ये सोचा कि अध्यात्म तत्व तो मूल चीज है, मोक्ष मार्ग की मूल चीज तो अध्यात्म तत्व है। करुणानुयोग में आता है लेकिन कम मात्रा में आता है, प्रधान रूप से यही साहित्य की भी रचना होनी चाहिए। तो ज्यादा हम कुंदकुंदाचार्य देव का नाम लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कि इसके पीछे दो कारण है। एक तो अध्यात्म तत्व के साहित्य जो कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा, ऐसा दूसरा आचार्य की इतनी रचना देखने में नहीं आती है। और उस अध्यात्म साहित्य में भी जो समयसार ग्रंथ है, परमागम है, वो तो अज्ञान का मिथ्यात्व छुड़ा करके सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एक ही मुद्दा उठा करके रचना की है, इसलिए वो हमारे मुमुक्षु जन के लिए बहुत प्रयोजनभूत है। तो एक तो कारण वो है कि आध्यात्मिक साहित्य में उनकी रचना सबसे श्रेष्ठ है और ज्यादा पैमाने में है। दूसरे हमारे उपकारी जो गुरुदेव है उनको भी समय सार निमित्त हुआ, तो कुंदकुंदाचार्य देव का प्रत्यक्ष उपकार हो गया,
परम गुरु,
तो ये हमारे गुरु के गुरु परम गुरु हो गए। तो इसलिए भी हमारे पढ़ने में, हमारे साहित्य में भी और हमारे चर्चा में भी कुंदकुंदाचार्य का नाम विशेष रूप से आता है। अब नाम एक साधक का है या एक गुरु का है, जिसको एक मान्य है उनको सभी अनंत मान्य है, पूर्व में जितने अनंत हुए सब मान्य हो जाते हैं। इसलिए नाम किसी एक का भले ही लिया जाए, चाहे एक का नाम लो या अनेक का नाम लो, उसमें अभिप्राय में तो सभी आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए समो का स्वीकार इसमें आ ही जाता है। नाम लेने से कोई ज्यादा है, नहीं नाम लेने से उसका कोई कम महत्व है। नृसिंह स्वामी का महत्व कम है, कुंदकुंदाचार्य का महत्व ज्यादा है, ऐसा हमारे अभिप्राय में कभी है ही नहीं। सभी आचार्यों का महत्व इतना ही है, कोई हिनाधिक होवे ऐसा कहने का हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार ही नहीं है। हम कौन कहने वाले कि ये वो बड़ा है ये छोटा है? हम कौन नाप करने वाले हैं? हमारा नाप करने का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। मंगलम भगवान मेरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदकुंदाचार्य लिया, तो इसके पहले तो आचार्य तो हुए थे, लेकिन अध्यात्म तत्व का प्रकाश विशेष रूप से वर्तमान में उन्होंने डाला, इसलिए इनका नाम लिया जाता है और इनका नाम में सबों का स्वीकार आ जाता है, किसी का निषेध आता नहीं है। बस बात खत्म हो गई।
ये परिपाटी तो गुरुदेव के पहले से
है,
ये परिपाटी तो गुरुदेव के पहले से
है। पहले से है, हाँ। उस वक्त एलर्जी नहीं होती थी, अभी आप लोगों में एलर्जी है। आपके संप्रदाय में संप्रदाय बुद्धि वाले को ये एलर्जी हो गई है कि कुंदकुंदाचार्य का नाम लेते हो, कांजी स्वामी का नाम लेते हो, दो ही नाम क्यों लेते हो? तो दोनों में सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहते, ऐसे बात है। तो हम साइड में गए ना तो पता चलता है ये भाई भाई इधर से आते हैं, आया है। क्योंकि क्या है तुम्हारे आगरा, आगरा से आ रहे हैं, आगरा में 3,500 घर है, दिगंबर जैनियों का कितना घर है, करीब 3,500 घर है। बाबा जी तो एक घर के 5 आदमी, वहां तो 6-7 होते हैं, अब गिन लो तो 25,000 कम कम दिगंबर 25,000 से ज्यादा हो गए, 30-35,000 लोग होंगे। लेकिन गुरुदेव का नाम और कुमकुंडाचार्य का नाम पड़ता है तो ये सोनगढ़ वाले हैं, सीधा ये सोनगढ़ वाले हो गए, ऐसा बनता है। लेकिन दिव्य ध्वनि के गहन रहस्यों को भरपूर परमागमों में क्या है, दिव्य ध्वनि का गहन रहस्य भरपूर भरा हुआ है। ऐसी रचनाएं, शास्त्र रचनाएं करके मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, संसार से छूटने का मार्ग है, अनंत दुख का और भवभ्रमण जन्म मरण का छूटने का मार्ग है, वो प्रकाशित किया उतना ही नहीं, अद्भुत रीति से प्रकाशित किया है। उनके प्रकाशन करने की, कथन करने की शैली देखते हुए कुछ बैंसरे को बहुमान आता है, अद्भुत पद्धति है, क्या पद्धति है, इसके लिए शब्द नहीं मिलते हैं, ऐसी कथन पद्धति से ये बात प्रदर्शित की है, प्रकाशित किया है। इसके अनुसार, इसकी परंपरा में ऐसे परमागमों को पढ़ करके वर्तमान में श्री कहान गुरुदेव शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्य खोलकर मुक्ति का मार्ग स्पष्ट रीति से समझा रहे हैं। पूज्य बेंसरी क्या लिखते हैं, कहान गुरुदेव ऐसा लिखते हैं, कहान जी स्वामी ऐसा नहीं लिखते हैं। अभी तो हमारे मुमुक्षु के ऐसा है कि जिनको गुरुदेव कहते हैं पसीना आता है। ये तो ज्ञानी है फिर भी क्या लिखते हैं, देखो, वर्तमान में श्री कहान गुरुदेव शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्य खोलकर, ये आचार्यों के शास्त्र के गहन रहस्य को, सूक्ष्म रहस्य को खोलकर मुक्ति का मार्ग स्पष्ट रीति से समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रंथ है वो गुरुदेव की उपस्थिति में लिखा गया है। ये बात जब बैंसरे बोले थे तो गुरुदेव विराजमान थे, तो समझा रहे हैं, अभी भी समझा रहे हैं, अभी तो दोनों चले गए, लेकिन ये जब घटना घटी है तब तो उपस्थिति थी गुरुदेव की। मुक्ति का मार्ग स्पष्ट रीति से समझा रहे हैं, गहन रहस्य को गुरुदेव अपने प्रवचन में खोलते थे, पर इसका लाभ पात्र जी उठाते थे और अपने आत्मा का कल्याण साधते थे। उन्होंने अपने सातिशय ज्ञान एवं वाणी द्वारा तत्व का प्रकाशन करके भारत को जागृत किया है। देश के प्रमुख शहरों में और अनेक गांव में आज गुरुदेव के मुमुक्षु है, तो गुरुदेव के, गुरुदेव को स्वीकारते हैं, तो सारा भारत ले लिया उसमें, क्योंकि देश में कोने कोने में भी लोग पड़े हैं, तो आत्म जागृति जाता है अपने करीब 2022 हो जाता है अभी नकल, तो गांव का नाम भी नहीं सुना हो वहां से लोग, ऐसे ऐसे नए नए गांव से चिट्ठी आती है। तो गुरुदेव का परम तत्व बहुत सुंदर है, गुरुदेव का उपकार मानते हैं लोग। अब आज भी छोटे छोटे गांव में आदमी का नाम तो सुना नहीं हो, गांव का नाम भी नहीं सुना हो, कुड़ाप्पा, कुड़ाप्पा कैसा गांव का नाम है, कुड़ाप्पा नाम का गांव है वहां से, वो दक्षिण में से, दक्षिण भारत में से ऐसे लोग पड़े हैं। गुरुदेव ने अपने सातिशय ज्ञान द्वारा और सातिशय वाणी द्वारा, वाणी में भी अतिशय और ज्ञान में भी अतिशय, अतिशय माने क्या, चमत्कार अतिशय माने चमत्कार। कैसा चमत्कार? कि जो दीन हीन पामर है उसको भगवान बना देता है। संसार में पामर भटकने वाले प्राणी को भगवान बनाने वाली वाणी है ये, इसलिए उसको साती से वाणी कहने में आती है। हाँ सर, संदर में तो करीब 8700-8800 है, और गांव गांव में अनेक शहर में प्रवचन हुए, वहाँ दूसरी 3000 हो सकती है, तो वो होगी 12000 होगी, हो सकती है। ठीक बात है। उन्होंने अपने सातिशय ज्ञान एवं वाणी द्वारा तत्व का प्रकाशन करके देखो, जीवों का पुण्य देखो। गुरुदेव की ओरिजिनल वाणी टेपों में रह गई, टेप का संशोधन हो गया गुरुदेव की उपस्थिति में। पहले तो तार वायर का स्टेप था, फिर ये पट्टी निकल गई, और अभी तो छोटे छोटे कैसेट बन गए घंटा घंटा के लिए, एक एक प्रवचन के। और इस कैसेट की संख्या कितनी होगी, अभी तक होगी तो हजारों की होगी, लाखों की होगी। टेप विभाग में रिकॉर्ड देना चाहिए कि आजकल कितनी डुप्लीकेट हुई, फिर दूसरे दूसरे से होगी वो तो दूसरी गिनो, 25% तो और होगी होगी इससे भी। हाँ, 12000 घंटा का वो तो है ही, वो ना होना चाहिए। पहले जब गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ तो अपने सोनगढ़ में जो हुए प्रवचन वो 8700-8800 था, तो दूसरे दूसरे गांव में जो प्रवचन हुए सब मिलके 12000 हो सकता है। और वाणी भी रह गई, ध्वनि मुद्रित हो गई। भारत को जागृत किया है गुरुदेव का अमाप उपकार है। क्या लिखते हैं बेंसरे? कि गुरुदेव का उपकार का नाप नहीं हो सकता, अमाप भी है और अनुपम भी है, उसकी उपमा भी दी जा सकती नहीं है। जगत में कोई पदार्थ नहीं है उपमा के लायक। इस काल ऐसे मार्ग समझाने वाले गुरुदेव मिले, वह हमारा अहोभाग्य है, वो हमारा अहोभाग्य है, महान भाग्य है। सातिशय गुण रत्नों से भरपूर कैसे हैं गुरुदेव? के चमत्कारिक गुण रत्नों से भरपूर गुरुदेव की महिमा और उनके चरण कमल की भक्ति क्या है, इसकी महिमा भी हमारे हृदय में विराजमान रहो और इसके चरण कमल की भक्ति भी अहोनिश रात्रि दिन निरंतर हमारे अंतर में हृदय कमल में विराजमान रहो। ऐसी भावना पूज्य बहन श्री ने मा करके अपना जो वक्तव्य है वो यहाँ समाप्त किया है। समय
भगवान